Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aur aaj ki katha ka vishay hai Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Visheshkar, Hare Krishna Mahamantra Sankirtan karne se hum kya milenge? Bahut log aise poochte hain. To ye sab kirtan karne se क्या फायदा होता? वो खाली टाइम पास के लिए है क्या? उससे क्या फायदा है? कुछ काम करो, पैसा कमाओ. क्यों ऐसा बिना कारण से समय बीतते हैं? ये हरे कृष्ण बोलने, ये सब बुरे लोग के लिए, मूर्खों के लिए. तो क्या फायदा मिलते हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से? एक बार एक ऐसे निंदुक श्रील प्रभुपाद से पूछ, तो हरे कृष्ण बोलने से क्या मिलते? और श्रील प्रभुपाद जोर से उत्तर दिया कि हरे कृष्ण कीर्तन करने से हम मृत्यु से मुक्त होते. तो हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन करने से अनेक अनेक असंख्य शुभ फल मिलते हैं. वो सब शुभ जो है आध्यात्मिक शुभ. इसलिए जो भौतिकतावादी है, जड़वादी है, वो फायदा जो हम मिलते हैं हरे कृष्ण कीर्तन करने से तो नहीं समझते, क्योंकि जड़वादियों या साधारण लोग का विचार में शुभ का मतलब है धनम जानम सुंदरी. अगर ज़्यादा पैसा हो जेब में या स्विस बैंक अकाउंट में, अगर जन है, अगर बहुत से लोग मेरे दोस्त हैं, दोस्त का मतलब फेसबुक फ्रेंड. आजकल आपके बहुत बहुत दोस्त हो सकते हैं, आप फेसबुक में एनरोल करो, लेकिन ऐसे दोस्तों कोई दोस्त नहीं है. धन जन और सुंदरी, अगर सुंदरी स्त्री हो मेरे, सुंदरी स्त्री है और सुंदरी गर्लफ्रेंड एक दो भी है, तो वो मेरे जीवन का सफलता है, ऐसे लोग सोचते. धन जन सुंदरी और ये सब भोगने के लिए स्वास्थ्य भी अच्छी होनी चाहिए. तो ये अभक्तों अनाध्यात्मिकवादियों का विचार है. शुभ शब्द की परिभाषा तो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण संकीर्तन के सत मुख्य शुभ फल वर्णन किया है. कैसे? कोई बोल सकते चैतन्य महाप्रभु कैसे संकीर्तन का शुभ फल, सत मुख्य शुभ फल वर्णन किया है? कोई बोल सकते? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय खैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्री कृष्ण संकीर्तन का परम विजय हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन करने से क्या मिलते, क्या क्या मिलते? प्रथम फल है चेतो दर्पण मार्जनम, यही अलंकारिक भाषा है कि वो सबकी चेतना है। तो जड़ और जीव में यही अंतर है, चेतना नहीं है, दर्द नहीं मिलते। अगर मैं आपको ऐसे ही करूँगा तो आप दर्द मिलेंगे, चेतना है। और चेतना के अनुसार हम भौतिक संसार में अलग अलग शरीर मिलते। तो शुद्ध अवस्था में जीव सच्चिदानंदमय है। सत का मतलब सनातन, उसका मतलब जन्म भी नहीं होते और मृत्यु भी नहीं होते, सत। और सत का मतलब सत्य में अधिष्ठित। तो सचित और चेतना भी है, वो जीव का लक्षण है कि चेतना है, और अजीव अचेतन और आनंदमय। सचित आनंद, ये कुछ अच्छा बोला। अच्छा, फर्स्ट प्राइज। सचित आनंद, तो जीव शुद्ध है और सचित आनंदमय है, परंतु इस भौतिक अवस्था में हम आसित असत अचित और निरानंदमय अवस्था में है। असत का मतलब क्या सत्य है हमें नहीं मालूम, हम नहीं मालूम कि हम सचित आनंदमय है। और परम सत्य की परम सत्य है, और वो परम सत्य कृष्ण है, हम नहीं जानते, इसलिए हम अचेत जैसे है। मतलब चेतना है, लेकिन चूंकि हमारी चेतना शुद्ध नहीं है, इसलिए कि मैं नित्य कृष्ण दास हूँ हम नहीं जानते। हम सोचते हैं कि इंद्रिय तर्पण जीवन का उद्देश्य है, और इसलिए हमारी अवस्था है निरानंद। आनंद है, लेकिन वो आनंद क्या है? एक हफ्ता का मेहनत करने के बाद वो पैसा जो हम मिलते काम करने से, वो सब पैसा लेके बिग बाजार जाना, यही आनंद है। और बिग बाजार में मैकडोनल्ड्स भी है, वो मंक्स, वो मैकडोनल्ड में मंक्स थे, हाँ वो ही आनंद है। लेकिन वो आनंद नहीं है, इंद्रिय सुख तो कोई सुख नहीं, उसमें थोड़ा सा सुख है, लेकिन वो सुख अपूर्ण है और अशुद्ध है। इसलिए आत्मा तुष्टि नहीं होती है इंद्रिय सुख से। और जितने भी हम खोज करते हैं सुख के लिए, तो फिर भी इतने सा हम दुख मिलते वास्तव में, ये माया की व्यवस्था है कि हम सुख के लिए, आनंद के लिए सब कुछ जो हम करते हैं हम सुख के लिए करते हैं, लेकिन वास्तव में हम दुख मिलते। और ये सब दुख प्राप्ति का मूल कारण क्या है कि हमारी चेतना अशुद्ध है। उसमें क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब। तो चेतना शुद्ध है, चेतना का स्वभाव शुद्ध है, परंतु अभी एक दर्पण या शीश जैसे उसके ऊपर धूल है, जिस इसलिए वो शीश तो साफ नहीं है, इसलिए हम कुछ भी स्पष्ट नहीं देख सकते। तो वो धूल क्या है? वो धूल है काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मत्सर इत्यादि। काम वो क्या है? वो भौतिक कामन है। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करूँ, हम बहुत प्लानिंग करते हैं तो कैसे हम इंद्रिय सुख मिलेंगे। तो ये सब दूषण है आत्मा के ऊपर, और ये सब दूषण साफ होते हैं श्री कृष्ण संकीर्तन से। तो ये प्रथम फल है श्री कृष्ण का संकीर्तन करने का, कि कृष्ण कीर्तन करने से हमारा चित्त जो अभी दूषित है और जिससे हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हम बार बार जन्म लेते हैं उसके बाद मृत्यु प्राप्त होते हैं इस भौतिक संसार में, हम इस प्रकार दुख मिलते हैं। इसका मूल कारण है कि हमारी चेतना दूषित। यंग यंग वापी स्वरम भावम त्यजंते कलेवरम थम थमे वायते कौंते असदा तद्भाव भावितः। इस गीता श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु का समय जिस विषय पर हमारा चित्त रहते हैं उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। तो पूरे जीवन में यदि हम कुत्ते जैसे ही सोचते हैं तो मृत्यु का समय हमारी चेतना उस प्रकार होगी और अगला जन्म कुत्ते का जन्म होगा। तो कुत्ते की भावना किस प्रकार है कि ये इलाका मेरी है, अगर कोई आएगा मैं उसको भगा दूंगा, वुप 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 तुम जाओ। और कि जीवन का उद्देश्य है भगवत सेवा करना, तो उसके बारे में कुछ भी धारणा नहीं है। तो खाली खाना कहा है, कुत्ती कहा है और कुछ भी धारणा नहीं है कुत्ते की। तो यदि हम ऐसे होते हैं तो ये मेरे इलाका है, ये मेरा मकान है, मैं मेरा अहम ममेति थी, यही भावना होती है। और कुछ भी उच्च चिंतन नहीं है तो वो कुत्ते जैसे है, और अगला जन्म तो कुत्ते का होगा या सांप या बिल्ली या 84 लाख प्रकार की जीव जाति में ही हम जन्म लेते। मूल कारण है दूषित चेतना, और शुद्ध चेतना क्या है? यही समझना कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो ऐसे ही समझना शुद्ध चेतना है। और कैसे समझना? क्योंकि मन में काम, क्रोध, लोभ इत्यादि हमेशा चलते रहते हैं, तो इसलिए वो खाली बोलने से कि मैं कृष्ण का दास हूँ वो दास्य भाव तो नहीं आएगा। तो साधना करना चाहिए, साधना से चित्त शुद्धि होती है। और विशेषकर इस कलयुग में मुख्य साधना है हरिनाम। तो पहला फल है कृष्ण संकीर्तन से चेतो दर्पण मार्जन, चेतना जो अभी आवृत है दूषित है साफ हो जाते हैं कृष्ण नाम संकीर्तन करने से। दूसरा फल है भव महादावाग्नि निर्वापन। इस संसार एक महान आग जैसे दावाग्नि, इसका मतलब जंगल में गर्मी के मौसम में बिना कारण से भी तो आग जलते, मतलब कारण है कि हवा बहुत गर्म होते हैं और एक पैर दूसरे वंश वंश का पैर तो दूसरे पैर से ऐसे क्या बोलते रबिंग कर्षण करते हैं और ऐसे वो पूरा वातावरण गर्म है और ऐसे आग अपने आप जलते हैं और पूरा जंगल में महान आग होते और सब जानवर और सांप और सब प्राणी जो उस जंगल में है तो सब आग में जलते हैं। तो इस प्रकार इस पूरे संसार में लोग तो सब कुछ जो करते तो सुख के लिए सब कुछ करते, परंतु महा भयानक स्थिति मिलती है। हम नहीं चाहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होगा, हम नहीं चाहते हैं कि दुख होगा, तो फिर भी दुख होते और हम जितने भी प्लानिंग कमीशन करते हैं और जितने भी व्यवस्था करते हैं जिससे हम सब इस भौतिक संसार में सुख में रह सकते हैं, तो हमारा सब प्लानिंग करने के बावजूद भी अंतिम फल होते हैं दुख, व्यक्तिगत दुख, समाज में दुख, यही संसार है। तो इस सांसारिक दुख से कैसे बचाना है, श्री कृष्ण संकीर्तन से। हमारा व्यक्तिगत जीवन में जिससे हम दुख से मुक्त हो सकते हैं इसलिए हमें श्री कृष्ण संकीर्तन करना चाहिए और जिससे पूरा समाज में सुख होगा दुख नहीं, इसलिए पूरा समाज में श्री कृष्ण संकीर्तन करना चाहिए। जैसे आजकल सरकार के द्वारा बहुत व्यवस्था है ट्रैफिक जाम बनाने के लिए, आज अभी मंदिर आने का समय सुना कि वो एक फ्लाईओवर है नहीं और उससे ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, सरकार की विशेष दया से। तो और सरकार की सब व्यवस्था करते हो या ये सब व्यापारी शॉपिंग मॉल, ये एक आधुनिक सुविधा है शॉपिंग मॉल बिग बाजार इत्यादि और क्या क्या वो सिनेमा भी होते हैं स्टेडियम वो लोग बनाते हैं जिससे समाज की वो सब समाज के लिए सुविधा होगा इंद्रिय सुख के लिए। तो अगर सरकार के द्वारा व्यवस्था होगा संकीर्तन करने के लिए कृष्ण संकीर्तन हरि नाम संकीर्तन, तो पूरे समाज में सुख शांति, वो शांति शब्द बोलना चाहता और उस समय अशांति का आवाज आया था कोई विरोधी है बाहर। कृष्ण संकीर्तन की महिमा नहीं सुनते, चुप संकीर्तन करो, मंदिर के अध्यक्ष विष्णु नाम प्रभु वो विरोधी को बताओ हरि नाम करना, तो सुख शांति और वास्तव शुभ होगा। तो व्यक्तिगत कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण संकीर्तन। और पूरे समाज का कल्याण के लिए श्री कृष्ण संकीर्तन करना चाहिए। और जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से मुक्त हो सकते, हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापन श्रेय कैरव चंद्रिका, ये बहुत अलंकारिक भाषा है। इसका मतलब है कि श्रेय होते, परम शुभ होते, सभी प्रकार का शुभ होते, श्रेय होते कृष्ण संकीर्तन करने से। तो हम जो इस भौतिक संसार में भौतिक दुखों से पीड़ित है, हमारे लिए हमारा मुख्य लक्ष्य है, जो आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं उनका मुख्य लक्ष्य है भौतिक संसार से मुक्त हो। अधिक लोग जो आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं जो कृष्ण भक्ति के लिए नहीं आते हैं, तो जिससे वे दुख से मुक्त हो सकते, विशेषकर कैसे वे जन्म मृत्यु दुख से मुक्त हो सकते, वो उनका आध्यात्मिकवादियों आध्यात्मिक पंथियों का मुख्य लक्ष्य है। तो उसके अलावा सभी प्रकार का श्रेय होते हैं कृष्ण संकीर्तन करने से, भौतिक शुभ भी होते हैं कृष्ण संकीर्तन करने से। भौतिक शुभ जैसे हम श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का राज्य का समय, तो वातावरण पूरा शुभ था, बारिश काफ़ी था, ज़्यादा नहीं था, कम भी नहीं था। और बारिश रात का समय पड़ती थी, दिन का समय जिससे हमको डिस्टर्ब करेगी ऐसे नहीं है, रात का समय जब लोग सोते थे। आजकल लोग तो 24 घंटे में दिन रात काम करते हैं, लेकिन एक शब्द है राक्षस, राक्षस का दूसरा शब्द है निशाचर, मतलब लोग जो रात को नहीं सोते, जगते हैं, तो ऐसे लोग निशाचर या राक्षस बोलते हैं। राक्षस लोग तो दिन में ही सोते हैं और रात को जगते हैं, और सभ्य लोग तो रात को शयन करते हैं और दिन में काम करते हैं। तो इस प्रकार तो बिना कष्ट से थोड़ा सा काम करने से पृथ्वी माता तो इतना संतुष्ट थी कि युधिष्ठिर महाराज का राज्य का समय भूमि देवी बहुत संतुष्ट थी, क्योंकि वो सब लोग धार्मिक थे और इसलिए बिना ज़्यादा परिश्रम करने से भी भूमि देवी काफ़ी फल फल सब कुछ देती थी। और आजकल हम भूमि माता को इतना परेशान देते हैं, सब केमिकल्स डालते हैं और फिर भी हम काफ़ी साग सब्जी अनाज नहीं मिलते, क्योंकि भूमि माता संतुष्ट नहीं है, क्योंकि लोग अधार्मिक है। तो इस प्रकार हरि नाम करने से सभी प्रकार का शुभ मिलते हैं, भौतिक, आध्यात्मिक और परम श्रेय है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो चेतो धर्म श्रेय करेव चंद्रिका वितरणम, वो चांद वो श्रेय श्रेय का चंद्रिका का आलो प्रकाश वितरित करते हैं श्री कृष्ण संकीर्तन। विद्यावधु जीवन और हरिनाम करने से हम वास्तव ज्ञान मिलते हैं। वास्तव ज्ञान क्या है? जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, शास्त्र वो सभी वेद शास्त्र का वाणी है, की वाणी है कि कृष्ण भगवान है। वेदैश्च सर्वैराहम एव वेद्यः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण भगवान है, सर्व ऐश्वर्य सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञ कृष्ण भगवान है। और कृष्ण के अलावा और सब कृष्ण के दास हैं। तो ये कि कृष्ण भगवान है और सब कृष्ण के दास है, ये ज्ञान का सारांश। और भगवद गीता में श्रीमद् भागवत में और सब ज्ञान जो है आध्यात्मिक ज्ञान, तो कलि शास्त्र अध्ययन करने से वो ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं हो, साथ साथ कृष्ण सेवा करना चाहिए और मुख्य सेवा है हरिनाम। तो शास्त्र अभ्यास करना चाहिए और शास्त्र कथा सुनना चाहिए और हरिनाम भी करना चाहिए। यदि हम हरिनाम करेंगे तो कृष्ण भगवान जो उनका नाम से अभिन्न है, उनकी कृपा से वो सब ज्ञान का प्रकाश होगा हमारा हृदय में। इसलिए विद्यावधु जीवन, विद्या वधु, वधु का मतलब पत्नी, विद्या वधु जीवन, ये विद्या की पत्नी का जीवन है। ये सब अलंकारिक भाषा है और इसका अर्थ है कि हरि नाम करने से वो सभी शास्त्र के सूक्ष्म सिद्धांत हमारा हृदय में प्रकाशित होगा। तो आनंदम बुद्धि वर्धनम, कृष्ण भक्ति में वो आनंद जो है वो एक महान सागर जैसे है और इस भौतिक संसार में वो सुख जो है वो एक बूंद जैसे है। कृष्ण भक्ति प्रेम सुख एक महान सागर जैसे है और इस भौतिक सागर में वो सुख जो है वो एक छोटा सा बूंद जैसे है और उस बूंद में पॉइजन भी है, साइनाइड भी है। मतलब इस भौतिक संसार में सुख है लेकिन वो सुख बहुत तुच्छ है। वो सुख क्या है? यन मैथुन आदि गृहम एदि सुखम ही तुच्छम। वो सुख जो इस भौतिक संसार में है वो तुच्छ है। वो सुख क्या है? मैथुन आदि, तो वो वास्तव सुख नहीं है, तरस सुख है। लेकिन वो सुख के साथ बहुत बहुत दुख भी होते। तरस सुख अनुभव करने के साथ बहुत बहुत दुख होते। इस भौतिक संसार एक दुख का सागर है और कृष्ण भक्ति प्रेम सुख वो एक महान सागर है और वो महान सागर अपार है। तो फिर भी हमेशा बढ़ते हैं यदि हम कृष्ण संकीर्तन करेंगे, उसमें यदि हम भाग लेंगे तो हम ऐसे अनुभव करेंगे कि हम कृष्णानंदा महान सागर में डूब जाते हैं और वो सागर हमेशा बढ़ते हैं। सुंदर वर्णन है। तो हम क्या करेंगे, हमारी क्या इच्छा है इस भौतिक पूरा संसार के लिए एक बूंद का सुख है। असंख्य जीव प्रयास करते हैं वो एक ही बूंद का स्वाद कर, और उस बूंद में बहुत दुख भी है। और कृष्ण प्रेम सागर वो अपार असीम है और उसमें सब जीव डूब सकते हैं और उसमें कुछ भी दुख नहीं है। तो उस सागर में डूबना चाहिए, दुख सागर में नहीं है। और वो सागर कृष्ण संकीर्तन करने से अपार होते हुए भी तो और बड़ा बन जाता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। तो कृष्ण संकीर्तन करने से हम ऐसा महसूस करते हैं कि हर कदम में प्रतिपदम हम पूर्ण अमृत का स्वाद करते, स्वाद मिलता है। वो स्वाद क्या है, बहुत मधुर है। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादम सर्वात्म स्नापनम। तो पूरा हमारा पूरा आत्मा तो पूरा साफ हो जाता है। और सर्वात्मा मतलब खाली ये कृष्ण भक्ति जो कृष्ण संकीर्तन करने से हम ये सब फायदा मिलते हैं, तो वो खाली एक दो जीव के लिए नहीं है। तो सर्वात्मा तो सब लोग इस श्री कृष्ण संकीर्तन में भाग ले सकते। तो विशेषकर जो अभी मनुष्य जन्म लिया है उनके लिए सहज है हरि नाम में भाग लेना। जो अमानव है, जो अमानव शरीर धारण करते हैं उनके लिए संकीर्तन करना कठिन है। लेकिन यदि चैतन्य महाप्रभु के भक्तों सब जगह में हरि नाम करेंगे तो दूसरे जीव भी वो हरि नाम सुनने से तो एक ही फायदा मिल सकते। तो यदि हम तपस्या करेंगे तो वो फल जो हम मिलते हैं तो हम खाली खाली हम एक व्यक्ति वो तपस्या का फल मिल सकते। यदि हम शुभ कर्म करेंगे तो कुछ लोग उससे फायदा मिल सकते। लेकिन यदि हम कृष्ण संकीर्तन करेंगे तो सब विश्ववासियों आध्यात्मिक कल्याण मिल सकते चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र के सात मुख्य फल, सात क्या है, पहला है चैतो दर्पण मार्जनम, चित्त शुद्धि होती है। दूसरा है भव महादावाग्नि निर्वापनम, वो पूरा संसार जो दावाग्नि जैसे है तो मिट जाते हैं, बंद होते हैं श्री कृष्ण संकीर्तन करने से। तो श्रेय कैरव चंद्रिका विधरण, तो जैसे रात को गर्मी के मौसम में हम चंद्रमा की शीतल रश्मि से आनंद मिलते हैं, तो इस प्रकार श्रेय कर हम श्रेय मिलते हैं हरि नाम संकीर्तन करने से, वो तीसरा फल। और चौथा विद्यावधु जीवन, हम आध्यात्मिक विद्या मिलती है श्री कृष्ण संकीर्तन करने से। तो आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद प्रेमानंद का सागर बढ़ते हैं उससे और प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम उस स्पष्ट है हर कदम में पूर्ण अमृत आस्वादन करना है और सत्वा है सर्वात्म स्नपनम तो हमारे पूरा आत्मा और सब आत्मा का पूरा कल्याण मिलते हैं श्री कृष्ण संकीर्तन से इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन हरे कृष्ण तो इसलिए संकीर्तन करना चाहिए धन जन सुंदरी के लिए नहीं है श्री कृष्ण का दिव्य प्रीति के लिए हमें संकीर्तन करना कैसे संकीर्तन करना चाहिए हे भगवान मुझको धन जन सुंदरी दे दो ऐसी भावना से नहीं शुद्ध भाव खाली कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए यदि हम ऐसे ही करेंगे तो हम भी सुखी होंगे यही सुख प्राप्ति का उपाय है जब तक हम प्रयास करते खुद का सुख के लिए तब तक हम सुख नहीं मिलते और यदि हम कृष्णार्थ के लिए चेष्टा सब यदि हम सब कुछ कृष्ण का सुख के लिए करते हैं हम पूरा सुख मिलते हैं हरे कृष्ण